तुरही की पुकार सुनिए। हम सब जानते हैं कि इन आखिरी दिनों में यहोवा अपने लोगों को सही राह दिखा रहा है और उन्हें वो सब दे रहा है जिससे वो उसके करीब रह सकते हैं, लेकिन ये हम पर है कि हम उसकी बात मानेंगे या नहीं। इस मामले में हम उन इसराइलियों से सीख सकते हैं जो वीराने में थे। तुरही की पुकार सुनते ही उन्हें उसके मुताबिक कदम उठाना था। यहोवा ने मूसा को दो तुरहियां बनवाने के लिए कहा था। चांदी को हथौड़े से पीटकर इन्हें बनाया जाना था। जब भी मंडली के लोगों को बताना होता था कि वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएं या सभी अपने पड़ाव उठाकर आगे बढ़ें, तो ये तुरहियां फूकी जाती थीं। गिनती 10:2। याजक इन तुरहियों को अलग अलग ढंग से फूंकते थे जिससे लोगों को पता चलता था कि उन्हें क्या करना है। आज भी यहोवा के लोगों को अलग अलग तरीकों से हिदायतें मिलती हैं। इनमें से तीन तरीके हैं। एक, जब हम बड़ी सभाओं में इकट्ठा होते हैं। दो, जब प्राचीनों को प्रशिक्षण मिलता है। और तीन, जब मंडली के किसी इंतजाम में फेरबदल किया जाता है। आइए इन तरीकों पर ध्यान दें और देखें कि इनमें और बीते जमाने की तुरहियों की पुकार में क्या समानताएं हैं। जब हमें बड़ी सभाओं के लिए बुलाया जाता है, जब यहोवा चाहता था कि पूरी मंडली पवित्र डेरे के द्वार पर इकट्ठा हो, तो याजक दोनों तुरहियां फूंकते थे। इसराइल के सभी गोत्र पवित्र डेरे के चारों तरफ चार दलों में बटे थे। वो सभी इन तुरहियों की पुकार सुन सकते थे। ऐसे में जो लोग द्वार के पास बसे थे वो तुरंत पहुंच जाते थे, लेकिन जो लोग दूर रहते थे उनके लिए वहां पहुंचना शायद इतना आसान नहीं था और उन्हें वक्त लगता था। चाहे वो दूर रहते हों या पास, यहोवा चाहता था कि सभी वहां इकट्ठा हों और उस सभा से फायदा पाएं। आज हम पवित्र डेरे में तो इकट्ठा नहीं होते, लेकिन हमें बढ़ावा दिया जाता है कि हम यहोवा के लोगों की सभाओं में जाएं, जैसे कि क्षेत्रीय अधिवेशनों और दूसरे खास कार्यक्रमों में। इन सभाओं में हमें जरूरी जानकारी और हिदायतें दी जाती हैं। दुनिया के हर कोने में यहोवा के लोग एक जैसे कार्यक्रम का मजा लेते हैं। जो लोग इन सभाओं में आते हैं उन्हें ऐसे लोगों के साथ संगति करने का मौका मिलता है जो हमेशा खुश रहते हैं। कुछ लोगों को बहुत दूर से आना पड़ता है, लेकिन उनका कहना है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कुछ लोग सभा की जगह से बहुत दूर रहते हैं और उनके लिए वहां तक आना मुमकिन नहीं है। ऐसे में वो क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे बहुत से लोग अपनी जगह से ही इन कार्यक्रमों को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार बेनिन शाखा दफ्तर में मुख्यालय से आए एक भाई का दौरा चल रहा था। उस दौरान एक कार्यक्रम को आर्लीट नाम के एक छोटे से कस्बे में दिखाया गया जो सहारा रेगिस्तान में है। भाई बहनों और दिलचस्पी रखने वालों को मिलाकर कुल 21 लोगों ने यह कार्यक्रम देखा। हालांकि वो मीलों दूर थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो उन सभी 44,131 लोगों के साथ हैं जो बेनिन में वो कार्यक्रम देख रहे थे। एक भाई ने कहा, वीडियो के जरिए कार्यक्रम दिखाने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। हम एक बार फिर महसूस कर पाए कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। जब प्राचीनों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, जब एक ही तुरही फूंकी जाती थी तो सिर्फ प्रधानों को, जो हजारों इसराइलियों से बने अलग अलग दल के मुखिया थे, भेंट के तंबू के पास आना होता था। गिनती 10:4। वहां आकर वो मूसा से सीखते थे। उन्हें जो भी प्रशिक्षण मिलता था उसकी मदद से वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाते थे। अगर आप एक प्रधान होते तो क्या आप वहां जाते और मूसा से सीखते? मंडली के प्राचीन प्रधानों की तरह नहीं है, ना ही वो परमेश्वर के झुंड पर धौंस जमाते हैं। इसके बजाय वो परमेश्वर के झुंड की देखभाल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जैसे समय समय पर उन्हें राज सेवा स्कूल के लिए बुलाया जाता है। ऐसा प्रशिक्षण पाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। इस स्कूल में प्राचीनों को सिखाया जाता है कि वो किस तरह मंडली की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल सकते हैं। इस प्रशिक्षण से प्राचीन यहोवा के करीब आ पाते हैं। यही नहीं, वो जिन भाई बहनों की मदद करते हैं उनका भी यहोवा के साथ रिश्ता मजबूत होता है। शायद आपको स्कूल में जाने का मौका ना मिला हो, लेकिन जो गए हैं उनसे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। जब हमसे बदलाव करने के लिए कहा जाता है, कभी कभी याजक चढ़ते उतरते स्वर में तुरही फूंकते थे। इसका मतलब था कि इसराइलियों को अपना पड़ाव उठाना है। जब इसराइलियों को अपना पड़ाव उठाना होता था तो सब कुछ बड़े कायदे से होता था, लेकिन इसमें काफी मेहनत भी लगती थी। हो सकता है कि कभी कभार कुछ इसराइली एक जगह से दूसरी जगह जाने से झिझके भी हों। क्यों? शायद कुछ इसराइलियों को लगा हो कि उन्हें बार बार या बिना बताए अपना पड़ाव उठाने के लिए कहा जा रहा है। बाइबल बताती है कि कभी कभी बादल सिर्फ शाम से सुबह तक ही ठहरता था, लेकिन दूसरे मौकों पर वो दो दिन या एक महीना या उससे भी ज्यादा समय तक रुकता था। गिनती 9:21-22। क्या आप जानते हैं कि इसराइलियों ने कितनी बार पड़ाव डाला? गिनती अध्याय 33 में 40 अलग अलग जगहों के नाम दिए गए हैं जहां इसराइलियों ने पड़ाव डाला। उस बड़े और भयानक वीराने में इसराइलियों ने कभी कभी शायद ऐसी जगह पड़ाव डाला हो जहां छांव थी। ऐसी जगह रुककर उन्हें जरूर अच्छा लगा होगा। शायद उनके मन में आया हो कि अगर वो ये जगह छोड़कर चले जाएंगे तो उन्हें दोबारा इतनी अच्छी जगह नहीं मिलेगी। जब इसराइली अपना पड़ाव उठाते थे तो सब गोत्रों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। हालांकि तुरही की पुकार हर गोत्र को सुनाई देती थी, लेकिन सबका एक ही वक्त पर निकलना मुमकिन नहीं था। जब तुरहियां चढ़ते उतरते स्वर में फूंकी जाती थीं, तो जिन गोत्रों ने पूरब की तरफ छावनी डाली थी उन्हें अपना पड़ाव उठाना होता था, यानी कि यहूदा, इस्साकार और जबूलून गोत्र को। उनके निकलने के बाद जब तुरहियां चढ़ते उतरते स्वर में दूसरी बार फूंकी जाती थी तो दक्षिण के तीन गोत्र अपना पड़ाव उठाते थे। जब तक सभी गोत्र अपना पड़ाव नहीं उठा लेते थे तब तक याजक इसी तरह तुरही फूंकते थे। हो सकता है आप संगठन में किए गए किसी बदलाव को समझ ना पाए हों। आपको लगा हो कि एक के बाद एक बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, या शायद आपको काम करने का पुराना तरीका ज्यादा पसंद हो। वजह चाहे जो भी हो, आपको लगा होगा कि आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है और नए तरीके के मुताबिक ढलने में आपको वक्त लग रहा है। लेकिन अगर हम इन बदलावों को अपनाएंगे तो समय के चलते हम देखेंगे कि इनसे हमें कितना फायदा हुआ है और यहोवा भी हमसे खुश है। मूसा के दिनों में यहोवा ने वीराने में लाखों आदमियों, औरतों और बच्चों को सही राह दिखाई। बिना उसकी मदद और मार्गदर्शन के वो जिंदा नहीं बचते। आज इन आखिरी दिनों में यहोवा हमें संभाल रहा है और सही राह दिखा रहा है, जिस वजह से हम उसके करीब आ पाते हैं और अपना विश्वास मजबूत रख पाते हैं। आइए हम ये पक्का इरादा कर लें कि इसराइलियों की तरह हम भी वफादारी से यहोवा की सुनेंगे। लेख समाप्त।